नमस्कार भारत, आज है 15 जून दिन शुक्रवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या। पत्रकार बिरादरी और सियासी हलकों में हत्या की कड़ी निंदा।
सबसे बड़ा सदमा है कश्मीर के लिए, जहां से ऐसी इंडिपेंडेंट आवाज़ों को खत्म कर दिया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई गई।
पहली मर्तबा है कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने अपने कहीं खुद इनिशिएटिव लिया। ये बहुत अहम रिपोर्ट है। पाकिस्तान क्या इस्तेमाल करेगा, कश्मीरियों को इस्तेमाल करनी चाहिए।
भारत सरकार ने रिपोर्ट को खारिज किया। असम में सत्ताधारी बीजेपी और असम गण परिषद आमने सामने। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अभी तक किसी भी संगठन या गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों की तस्वीर जारी की है। शुजात बुखारी को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शुजात बुखारी की हत्या पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े राजनेताओं और पत्रकारों ने शोक जाहिर किया है। पीडीपी नेता नईम अख्तर ने शुजात को याद करते हुए कहा,
मेरे ख्याल में कश्मीर के बेस्ट नोन, जो सबसे ज्यादा जाने पहचाने जर्नलिस्ट दुनिया में हैं कश्मीर से, उनमें शुजात बुखारी सर फहरिस्त। तो उनका जाना बहुत बड़ा सदमा है उनकी फैमिली के लिए, उनकी फ्रेटर्निटी के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा सदमा है कश्मीर के लिए, जहाँ से ऐसी अच्छी आवाज़ों को, इंडिपेंडेंट आवाज़ों को खत्म कर दिया जा रहा है। सबके लिए सोचने का मौका है कि कहाँ जा रहे हैं हम इस तरह के काम करके।
ये थे पीडीपी नेता नईम अख्तर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और उसकी जांच की बात कही है। भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और इसे भारत की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीनी कब्जे वाले इलाके में रह रहे लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रस्ताव को पास कर दिया है। 120 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाले और 8 सदस्यों ने इसका विरोध किया, जबकि 45 सदस्यों ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। अमेरिका उन देशों में से था जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने इसे एक तरफा और बेकार बताया है। निकी हेली ने कहा,
The nature of this resolution clearly demonstrates that politics is driving the
day. ये पूरी तरह से एक तरफा प्रस्ताव है। इसमें हमास का कहीं भी जिक्र नहीं है, जो नियमित रूप से गजा में हिंसा को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल और फलस्तीनियों के बीच शांति स्थापित करने के लिए आगे बढ़कर कुछ भी प्रयास नहीं किया है। ये थे निकी हेली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध करने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। यहाँ संसद के निचले सदन में पहले 14 हफ्ते में गर्भपात को कानूनी मान्यता दे दी गई है। जब संसद में इसे मंजूरी दी गई तो बाहर खड़े लोगों में खुशी की लहर छा गई, लेकिन देश के पादरी ने कहा है कि इस फैसले से उन्हें दुख पहुंचा है। अब ये बिल सीनेट के सामने पेश होना है, जहां इसका पास होना थोड़ा मुश्किल होगा। मौजूदा समय में अर्जेंटीना में गर्भपात गैरकानूनी है। रेप के मामले में या फिर अगर इससे महिला की जान को खतरा हो तो ही इसमें छूट दी जाती है। अगर गर्भपात का अधिकार कानून बन जाता है तो अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला ऐसा देश होगा जहां गर्भपात की अनुमति होगी। निचले सदन में फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए विक्टोरिया नाम की एक महिला समर्थक ने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, अभी एक और कदम बाकी है, लेकिन ये कानून बन जाएगा, ये कानून बनेगा। ये थे विक्टोरिया के शब्द। 14 जून से शुरू हुए फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान रूस ने अपने प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब को 5-0 से हरा दिया है। मॉस्को में खेला गया ये मैच 64 मैचों के टूर्नामेंट का पहला मैच था। इस टूर्नामेंट के आयोजन में रूस करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। जानकारों का कहना है कि रूस बीते कुछ वक्त से अलग थलग पड़ा था और यह इसी कोशिश का नतीजा है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पत्रकार बिरादरी और सियासी हलकों में इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है कि आतंक ने ईद से पहले अपना बदसूरत सिर एक बार फिर उठाया है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
उत्तरी कश्मीर के क्रीरी गांव में ये रोने बलखने की आवाजें शुजात बुखारी के घर से आ रही हैं। यहां हर एक आने वाले की आंख नम है। उनके करीब रहने वाले या फिर उनके रिश्तेदार शुजात बुखारी की मौत की खबर के बाद सदमे में हैं। घर के बाहर वरंदा पर बैठी महिला बार बार रोते रोते कह रही थी, ये बता रही थी कि अब मैं किसको बताऊं कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। शुजात बुखारी के दो मंजिला मकान में काफी लोग मौजूद हैं। शुजात बुखारी का मृत्यु शव घर के आंगन में रखा हुआ है और कई लोग उनका चेहरा देखने के लिए आ रहे हैं। उनके शव से जो भी मुंह से कपड़ा उठाता था वो रो पड़ता। आज सुबह 11 बजे अपने गांव क्रीरी में उन्हें दफनाया जाएगा। शुजात बुखारी को गुरुवार शाम को अपने दफ्तर के बाहर श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में हमलावर ने गोली चलाकर मार दिया। इस हमले में उनका एक सुरक्षा कर्मी भी मारा गया है। शुजात बुखारी डेली अंग्रेजी अखबार राइजिंग कश्मीर के संपादक थे। शुजात बुखारी के एक कजिन सईद बशारत इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहते हैं,
पूरी फैमिली गहरे सदमे में है और हमारे पास इस वक्त अल्फाज भी नहीं है कि हम इसको बयान कर सकें।
बीते कई वर्षों से शुजात बुखारी श्रीनगर में रहते थे और दूसरे कई रिश्तेदार भी श्रीनगर में कई वर्षों से रहने लगे थे। ईद या किसी बड़े त्योहार पर सभी अपने गांव क्रीरी में जमा होकर एक दूसरे से मिलने की उम्मीद रखते थे। सईद बशारत भी ईद मनाने के लिए आज अपने गांव क्रीरी आए थे।
तो उस हिसाब से इनका भी इंतजार था, अब अल्लाह का करना था कि खुशियाँ जो है वो गम में तब्दील हो गई, सदमे में तब्दील हो गई।
शुजात बुखारी के एक पत्रकार दोस्त तारिक अली मीर कहते हैं कि कश्मीर में आज पत्रकारिता का एक चैप्टर खामोश कर दिया गया।
कि हमने न सिर्फ अपना एक साथी बल्कि वाकईतन कश्मीर की सहाफत का एक बाप जो है उसे खामोश कर दिया गया है।
कश्मीर के अलगावादियों से लेकर भारत नवाज राजनीतिक दलों ने शुजात बुखारी की हत्या को निंदनीय बताया है। चरमपंथी संगठन लश्कर ए तोयबा ने भी शुजात बुखारी की हत्या को निंदनीय बताया है। इस बात की जानकारी कश्मीर की एक स्थानीय न्यूज एजेंसी ने दी है। शुजात अपने पीछे अपने दो बच्चों, पत्नी और माँ बाप को छोड़ गए हैं। वर्ष 1990 में कश्मीर में हथियारबंद आंदोलन शुरू होने के बाद कश्मीर में कई पत्रकारों पर जानलेवा हमले किए जा चुके हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
बीती शाम ढलते ढलते रात होने से पहले कश्मीर में शुजात बुखारी की हत्या के अलावा एक और हत्या हुई है। बुधवार को पुलवामा इलाके में सेना के एक जवान औरंगजेब को अगवा कर लिया गया था, जिनकी कल हत्या कर दी गई। ये घटनाएं ऐसे समय हो रही हैं जब घाटी में रमजान के दौरान एक महीने के लिए लागू सीज फायर पर अभी फैसला होना बाकी है कि ये इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि भारत प्रशासित कश्मीर में हालात एक बार फिर बिगड़ रहे हैं? हमारी सहयोगी मानसी दास ने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से यही सवाल किया।
जी देखें, ये जो कल शाम को शुजात बुखारी जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे उनकी मौत की खबर आई, उससे एक ही दिन पहले सीमा पर बीएसएफ के चार जो सुरक्षा कर्मी हैं जिनमें एक ऑफिसर भी था वो मारे गए थे शेलिंग में। एक तरफ से तो सीमा पे तनाव है ही, हालांकि बार बार डीजीएमओ की मीटिंग होती है, बार बार सीज फायर को अपहोल्ड करने की बातें होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो घाटी में माहौल है सीज फायर के दौरान, बेशक जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन ऑल आउट है वो नहीं हुआ, यानी क्रैक डाउन या बड़े पैमाने पे तलाशी अभियान वो नहीं हुए, लेकिन जहां तक किलिंग्स का सवाल है तो खुद गवर्नमेंट के फिगर्स हैं कि 6 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं और इसके अलावा 20 के करीब मिलिटेंट्स मारे गए हैं और 4 सिविलियंस मारे गए हैं भिन्न भिन्न घटनाओं में। तो इस तरह से सीज फायर तो है, लेकिन सवाल यह है कि दूसरा ये शुजात बुखारी की घटना के हवाले से यह है कि श्रीनगर को अभी तक मिलिटेंसी फ्री जोन कहा जाता था और अभी तक तो हालांकि ये मालूम नहीं है कि इनको किसने मारा है, क्योंकि किसी गुट ने इनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हथियार लेकर बिल्कुल श्रीनगर में जहां पे प्रेस एनक्लेव है तो वहां पे किस तरह से बंदूकधारी आए।
और श्रीनगर का ये जो इलाका है यहाँ पे सुरक्षा बहुत चाक चौबंद रहती है।
बिल्कुल, ये श्रीनगर तो बहुत इसमें तो हर तरफ से सुरक्षा है। बिल्कुल पास में कुछ गज पे ही एक श्रीनगर का सबसे बड़ा पुलिस थाना है जिसको कोठीबाग पुलिस स्टेशन कहते हैं। बाएं बाजू चले तो जो पहले जमाने में सिनेमा हुआ करता था वहां पे सीआरपीएफ का एक कैंप है। तो इसके बाद जो है कई जगहों पे नाके हैं, बंकर्स हैं, तो वहां पे पुलिस भी रहती है अक्सर, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहां पे प्रेस कॉलोनी में किसी के कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे होते हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं, तो वहां पे प्रदर्शन भी किए जाते हैं, इसलिए वहां पे पुलिस की भी तैनाती रहती है। तो इस तरह से ये पुलिस भी, इसीलिए कल जब हमने बात की इंस्पेक्टर जनरल पुलिस स्वयं प्रकाश पानी से, तो उनका भी कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि किस तरह से ये मुमकिन हुआ।
घाटी में फिलहाल सीज फायर है। कुछ दिन पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह की वहां पर यात्रा हुई थी और उसके बाद एक टेलीविजन पर एक इंटरव्यू देते हुए अजीत डोभाल एनएसए जो है उन्होंने भी कहा था कि सीज फायर शायद ईद के आगे अब एक्सटेंड नहीं होगा। आपको लगता है कि इस घटना के बाद घाटी में जो सीज फायर लागू किया था सरकार ने उस पर कुछ असर पड़ेगा?
नहीं, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक ये है कि जो 10 जून को यहाँ पे आए थे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उस दौरान भी हिंसा की घटनाएं घटी, बल्कि जब वो उत्तरी कश्मीर गए तो वहां पे भी एक मुठभेड़ हुई। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, बल्कि उसके बाद आर्मी चीफ का बयान, जनरल रावत का कल ही उनका बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी कश्मीर में शांति को एक चांस देना चाहती है। और दूसरी तरफ दूसरा एक बयान जो जम्मू कश्मीर जो राज्य की बीजेपी शाखा है उसके जो चीफ है रविंदर रैना, उन्होंने बयान दिया है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा। तो अब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने किसी ग्रैंडर जो है पर्सपेक्टिव में बात की होगी, लेकिन ऑफिशियली अभी तक इस बारे में, क्योंकि कल रात तक इस बारे में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि कल ही ये फैसला होना था कि एक्सटेंड करना है नहीं करना है, लेकिन वो मीटिंग इनकंक्लूसिव साबित हुई। इसमें हो सकता है कि आज कोई डेवलपमेंट हो।
श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात कर रही थी मानसी दास। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की स्वतंत्र जांच की जाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की अपनी तरह की ये पहली रिपोर्ट है और इसमें भारत प्रशासित और पाकिस्तान प्रशासित दोनों तरफ के कश्मीरों में मानवाधिकारों पर चिंता जताई गई है। इस खबर पर और जानकारी दे रही हैं कमलेश।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के उच्चायुक्त जायद रात अल हुसैन ने संकेत दिया है कि जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाया जा सकता है।
The political dimensions of the dispute between India and Pakistan.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख जायद रात अल हुसैन कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है उसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर बहुत बात की जाती रही है, लेकिन ये जगह कोई युद्ध स्थल तो है नहीं। यहाँ असली संघर्ष बुनियादी मानवाधिकारों का है, जहाँ लोग आज भी बुनियादी हक के लिए तरस रहे हैं। लेकिन भारत ने इस रिपोर्ट को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए पक्षपातपूर्ण बताया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत प्रशासित कश्मीर के बारे में इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने इस रिपोर्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र का आभार जताया है, लेकिन भारत ने सवाल किया है कि आखिर इस रिपोर्ट को जारी करने की मंशा क्या है, भारत के लिए इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं। इस सवाल पर साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रवि नायर कहते हैं,
बहुत फिक्र की बात है कि इसमें दो इम्पोर्टेंट मुद्दों को उठाया गया है। पहली बात, ये रिपोर्ट बहुत सोच समझ के लिखा गया है, हर सेंटेंस को नाप तोल के लिखा गया है। इंडिया इस तरह से डिसमिस करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को ही दोषी ठहराएगा, ना कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, क्योंकि ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स काउंसिल में डिस्कस होगा, उसके बाद जनरल असेंबली में डिस्कस होगा, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा।
वहीं पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जहरा का कहना है,
पहली मर्तबा है कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने अपने तय खुद इनिशिएटिव लिया। ये बहुत अहम रिपोर्ट है। पाकिस्तान क्या इस्तेमाल करेगा, कश्मीरियों को इस्तेमाल करनी चाहिए। और पाकिस्तान जो बात करता है कश्मीरी हक के खुद इरादियत, एक 1172 यूएनएससी की रेजोल्यूशन आई थी जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, जब यूएन ने बड़ी क्लियरली पहली मर्तबा कहा था कि इसको रिजॉल्व करें, पहली मर्तबा बहुत सालों के बाद। और हमें लगता है कि ये इतने सालों के बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट यूएन ने खुद अपने इनिशिएटिव पर निकाला है, तो ये अहम चीज है इस वक्त कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तान जो कश्मीरियों के हक की बात करता है उसके लिए।
ये थी पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जहरा। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कश्मीर में बहुत ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की है, जहां 2016 के बाद कई नागरिक मारे गए हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से भी कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण विरोध और असहमति को खत्म करने के लिए चरमपंथ विरोधी कानून का दुरुपयोग न करे।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की स्वतंत्र जांच की जाए। रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश। अफगानिस्तान में पिछले महीने अगवा किए गए 7 भारतीयों में से अभी तक किसी एक की भी रिहाई नहीं हो पाई है। इनमें से 4 मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं। इन मजदूरों के परिजनों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। वे आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर सकते हैं। सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
सुंदरी देवी कल अलसुबह जग गई। उन्हें अपनी बहू चमेली देवी को दिल्ली के लिए रवाना करना था। चमेली देवी के साथ बगोदर के अलग अलग गांवों की 2 और महिलाएं दिल्ली गई हैं। इनके पतियों का पिछले 6 मई को अफगानिस्तान के बागनान प्रांत में अपहरण कर लिया गया था। वे वहां भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका के स्वामित्व वाले केईसी इंटरनेशनल के लिए काम करते थे। इसी कंपनी ने इन महिलाओं की दिल्ली यात्रा का खर्च उठाया है। इनके जाने के बाद दोपहर करीब 12 बजे में अगवा मजदूर प्रकाश महतो की मां सुंदरी देवी से मुखातिब हुआ। बातचीत आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा,
ठीक है हम तो मांगवे सरकार खोजो ना खोजो जाने के लिए ढूंढ रही 17 दिन से ढूंढती है।
सुंदरी देवी गिरिडीह जिले के घाघरा गाँव में रहती है। इसी गांव के प्रसादी महतो भी अगवा किए गए भारतीय मजदूरों में से एक हैं। घर पर उनकी पत्नी मीना देवी से मेरी बात होती है।
सरकार के हमको जितना हम बोल हमारा हाथ लेकर हम प्रणाम करो खे हमारा जितना हमारे आदमी के भूख हमारे आदमी जहाँ है तहाँ से हमारे आदमी तनी हम खोज कर ढूंढ के हम तैयार कर देते और हम वाटर हम सरकार के हम कर रखे हैं।
इनसे बातचीत के बाद मैं महुरी गाँव पहुँचा। यहाँ के हुलास महतो ने अपनी बहन की शादी के लिए करीब 1.5 लाख का कर्ज लिया था। इसके बाद वे अफगानिस्तान चले गए ताकि ज्यादा पैसा कमाकर इस कर्ज की अदायगी कर सकें। गांव में उनकी 8 साल की बेटी ममता को इंतजार है कि पापा वापस आएंगे तो वह जींस और टॉप खरीदवाएगी। बहनशीला कहती है कि अब अपने भाई को परदेश नहीं जाने देंगी तो माँ डेलिया देवी बार बार रोने लगती हैं। डेलिया देवी कहती हैं,
उसने हमारा बेटवा गेले उसने हमारा घूर के चाहिए यार हम छोटे छोटे नतनी है नाती है के ओकर देखते चेक के देखभाल करते।
महुरी घाघरा इन दोनों गांवों के 500 से अधिक लोग विदेशों में नौकरी करते हैं। यहाँ के मुखिया संतोष रजक ने बताया,
सरकार से किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की जा रही थी। ग्रामीणों ने हम लोग जो है बगोदर में एक मार्च भी किए थे, उसमें हम लोग मांग कर रहे थे कि हमारे बेटे को साकुशल रिहाई करवा दिया जाए। और इसके बाद जो है फिर वो उस समय निर्धारित नहीं कुछ हम लोग को किसी प्रकार से मैसेज आया, तो इसके बाद हम लोग राजभवन में जो है महामहिम के एक दिवसीय धरना भी दिए और वहाँ भी एक पत्राचार करने के बाद फिर हम लोगों को नहीं लगा तो फिर हम लोग जो है दिल्ली के लिए वहाँ जो है धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी वहाँ समय निर्धारित किए थे लेकिन किसी कारण नहीं मिलने के बाद जो है पुनः बोले कि जो है संबंधित कंपनी से जो है हम बात करेंगे और उन्हीं से परिवार को बुलाएंगे।
घाघरा में मेरी मुलाकात बगोदर पश्चिमी के मुखिया लक्ष्मण महतो और प्रवासी ग्रुप के संचालक सिकंदर अली से भी हुई। मैं हजारीबाग जिले के टाटी झरिया भी गया। यहाँ की बेडम गांव के काली महतो की पत्नी पमिया देवी भी दिल्ली गई हैं इस आस में कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उनके पति की रिहाई करा देंगी। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए बगोदर में।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में शामिल क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद क्या भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ देगी या सियासी मजबूरियों की वजह से मन मारकर उसके साथ बनी रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि असम में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को लेकर कई जाति संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते असम गण परिषद को भी बीजेपी का विरोध तो करना पड़ रहा है, लेकिन वो अभी तक सरकार से अलग होने के बारे में फैसला नहीं ले पाई है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद यूं तो हर मौके पर बीजेपी सरकार के प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करती दिख रही है, लेकिन फिलहाल वो सरकार के साथ ही है। उसे इस बात की चिंता भी है क्योंकि इस बिल को लेकर जातीय संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो यहाँ के मूल लोगों की भावनाओं के साथ खड़ी ना हो सकी तो पार्टी का बचा खुचा समर्थन भी खिसक सकता है। लिहाजा पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच पर नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के कदम का पुरजोर विरोध करने की बात कह रहे हैं। जबकि एजीपी के गठबंधन तोड़ने वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक का विषय उनकी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्स में साल 2016 के विधानसभा चुनाव के पहले से ही शामिल था। बीजेपी सरकार में रहते हुए एजीपी नेताओं के ऐसे बयान में और उनके विरोध जताने के तरीके में कितना दम है, इस पर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अखिल रंजन दत्ता ने बीबीसी से कहा,
एजीपी का जो है उसका अपने पार्टी में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कोई कोई लोग बोलता है हम तो बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहता हूं, और उसका प्रेसिडेंट जो है और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो सरकार में है, मंत्री जो है, वो बोलता है अगर ये एक्ट बन जाए हम बाहर आएंगे। का कोई मतलब रहा क्या? अगर आपको प्रोटेस्ट करना ही है आप अभी निकालिए ना, अभी बाहर आ जाइए ना।
सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अपडेट करने का काम चल रहा है। वहीं राज्य की बीजेपी सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को पास करवाना चाहती है। अगर केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करवा लेती है तो इस बिल के तहत सैकड़ों की तादाद में खासकर हिंदू बांग्लादेशियों के यहां आने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी सरकार के गठबंधन में शामिल एजीपी की भूमिका पर काफी सवाल उठ रहे हैं। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ गोस्वामी कहते हैं,
जो आदमी पहले बीजेपी को वोट दिया था वो लोग बोल रहे हैं वो लोग को देने से क्या फायदा है। अभी तो टाइम पर एजीपी आगे बढ़ने को एक मौका मिला था, अभी वो लोग निकल आने से गवर्नमेंट से वो लोग को ऊपर प्रचार होता था। सामने है लोकसभा का चुनाव।
साल 1979 से 6 साल तक चले असम आंदोलन ने समूचे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इस जबरदस्त आंदोलन को सफल करने के लिए असमिया जाति के सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। एक बार फिर नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम के जातीय संगठन एकजुट होकर उसी तरह का विरोध कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि असम आंदोलन ने जिन छात्र नेताओं को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया था आज उनकी आवाज थोड़ी कमजोर पड़ गई है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
और आइए वक्त जाया किए बिना आज दिल्ली के अखबार क्या कह रहे हैं भूमिका राय से जान लेते हैं।
जी संदीप, अगर दिल्ली से छपने वाले प्रमुख अखबारों की बात करें तो ज्यादातर अखबारों ने पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर एक बेहद मार्मिक तस्वीर प्रकाशित की है और लिखा है कि सीनियर कश्मीर एडिटर की गोली मारकर हत्या। इसी खबर को एनबीटी ने लिया है कुछ अलग तरीके से, श्रीनगर में एडिटर की दिन दहाड़े हत्या। और दैनिक भास्कर ने इसी खबर को क्या कहते हैं, जो सैनिक जिनको अपहरण कर लिया गया था, मिलिटेंट्स ने अपहरण कर लिया था जिनका, उनके साथ मिला करके इस खबर को दिया है कि ईद पर जा रहे जवान की हत्या, इफ्तार को निकले संपादक को भूना। और दैनिक जागरण ने भी इसी खबर को लिया है और लिखा है कि ईद के बाद कश्मीर में फिर चलेगा आतंकियों के सफाई का अभियान। तो इस ये आज की सबसे बड़ी खबर है जिसको लगभग हर अखबार ने अपने पहले
खबरों के अलावा और क्या खबरें
जी
हैं?
अगर इसके अलावा बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की ही बात करें तो अखबार ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर भारत की टिप्पणी जो है उसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूएन की रिपोर्ट जो है वो अपुष्ट सूचनाओं पर आधारित है और साथ ही पक्षपातपूर्ण भी है। तो भारत ने इस रिपोर्ट को अपने संदर्भ में नहीं लिया है। और अगर इसके अलावा दूसरी खबरों की बात करें तो द हिंदू ने राजीव गांधी की हत्यारों को रिहा करने की तमिलनाडु सरकार की याचिका को खारिज हो जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस मामले पर फैसला जो है वो गृह मंत्रालय के सुझाव के बाद ही लिया जाएगा।
बहुत शुक्रिया भूमिका समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। श्रोताओं, भारत और रूस की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, ये बात आप हम सभी जानते हैं। आज़ादी के बाद से रूस ने कई बार आगे बढ़कर भारत की आर्थिक और सामरिक रूप से मदद की। हालांकि ये बात एक दो दशक पहले जितनी जोर देकर कही जाती थी वो जोर अब पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने रूस जाकर यही समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया।
आईटी क्षेत्र में काम करने वाले भारत के अभिषेक अब मॉस्को में रम चुके हैं। उनकी पत्नी रूस की है और बेटा 6 महीने का। इनका रोमांस यूक्रेन में हुआ और शादी उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर में। दोनों मियां बीवी नौकरी करते हैं और इनका मानना है कि भारतीयों का रूस से लगाव पुराना है, बस एक ही कसक है। अभिषेक सिंह ने बताया,
एक प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट
अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को आसानी से यहाँ बुलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वीजा के नियम बहुत कड़े हैं। हाँ, रूसियों को भारत जाने के लिए वीजा बेहद आसानी से मिलता है।
हाँ, इंडियन वीजा यू कैन इजीली गेट।
भारत और रूस के संबंध आज के नहीं है, चाहे वो फौजी मदद हो या व्यापार, आजादी के बाद से ही रूस को लेकर भारतीय नजदीकी जग जाहिर है। कई भारतीय ऐसे थे जिन्होंने उस दौर में यहाँ आकर अपनी जगह बनाई। सैमी कोतवानी भी ऐसे ही एक शख्स हैं जो मुंबई से 1990 में रूस आए थे। तब यहाँ के हालात मुश्किल थे। आज सैमी कोतवानी की टेलरिंग कंपनी पूरे यूरोप में फैल चुकी है।
ये वो देश नहीं रह गया जो आप जानते थे। ये देश वन टाइम मेकिंग मनी वाला नहीं रह गया। बिजनेस यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जैसा होना चाहिए। आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके आइए, बड़े बड़े टाइम का काम करने की बात कीजिए, तो इससे अच्छा देश कहीं नहीं है।
इस समय मैं क्रेमलिन में मौजूद हूँ जहाँ रूसी सत्ता के गलियारे हैं। मेरे सामने खूबसूरत गुंबदों वाला सेंट बेसिल्स चर्च है और दाईं तरफ रूसी राष्ट्रपति का सरकारी आवास। रूस की संसद ड्यूमा भी यहाँ से कोई 100 मीटर दूर दिख रही है। सोवियत यूनियन के दौर में भारत को यहाँ के सबसे नज़दीकी मुल्कों में गिना जाता था, लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है क्योंकि दोनों ने अपनी दोस्ती का दम भरने के अलावा नए दोस्त भी चुन लिए हैं। पिछले 2 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी है और देश ने अमेरिका और दूसरे देशों में दिलचस्पी बढ़ाई है। रूस ने भी यूरोप की तरफ हाथ बढ़ाया है। शायद यही वजह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बेहद कम है और भविष्य में बढ़ेगा या नहीं इस पर भी कुछ कह पाना मुश्किल है। मॉस्को में रहने वाले कुमार वेलांगी भारतीय आम के व्यापारी हैं। उन्हें लगता है कि रिश्तों में काफी बड़ी जगह खाली हो गई है। कुमार वेलांगी को सुनिए।
रोड ब्लॉक ये है कि बात जब स्थिरता या समय पर पैसों के भुगतान की होती है तब भारत की टॉप कंपनियां रूसी बाजार को लेकर थोड़ी असहज रहती हैं। भारतीय कंपनियों को यहां आना थोड़ा रिस्की लगता है और ये गैप तभी भर सकता है जब भारत की टॉप 100 कंपनियां यहां आकर अपने दफ्तर खोलेंगी और वो करना शुरू करेंगी जो चीन की कंपनियां यहां पहले से कर रही हैं।
अदर कंट्रीज आर डूइंग लाइक चाइना।
एक दौर था जब हिंदी रूसी भाई भाई भारत ही नहीं रूस में भी लोगों की जुबां पर था। क्या वैसा एक दूसरा दौर आएगा, फिलहाल कह पाना मुश्किल है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी मॉस्को।
और रूस में फुटबॉल विश्व कप शुरू हो गया है। मॉस्को में खेले गए पहले मुकाबले में मेजबान रूस ने सऊदी अरब को 5-0 से हरा दिया है। बाकी खेल खबरें इंदु पांडे की जुबानी।
फुटबॉल का 21वां फीफा विश्व कप कल शाम रूस की राजधानी मॉस्को में शुरू हो गया। 21वें फीफा विश्व कप में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सबसे अमीर टीम स्विट्जरलैंड की मानी जा रही है। वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी टीमों में से कौन टॉप पर है, अगर इसको देखा जाए तो जर्मनी का नंबर सबसे पहले आता है, नंबर 2 पे ब्राजील है और नंबर 3 पे पुर्तगाल। और आज इजिप्ट और उरुग्वे के बीच में ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा शाम 5:30 बजे। फुटबॉल एक्सपर्ट गौस मोहम्मद,
उरुग्वे की फिनिशिंग अच्छी है, उनकी मैच्योरिटी है, उसका तो उनको एडवांटेज मिलेगा, पर ये मैच आसान नहीं है उरुग्वे के लिए।
दूसरी तरफ आज ही मोरक्को और ईरान ग्रुप बी का मैच खेलेंगे और पुर्तगाल और स्पेन ग्रुप बी में आज रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे। यूरोपीय चैंपियन पुर्तगाल फीफा विश्व कप में जब आज अपने पड़ोसी स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा तो सभी की निगाहें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर टिकी होंगी।
मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीनी कब्जे वाले इलाके में रह रहे लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रस्ताव को पास कर दिया है।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार और फेसबुक के जरिए हमें आपसे जोड़ा प्रशांत चहल ने। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।